नमस्कार, रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आर जे तेजल आपल्या सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करते. जाणून घेऊया चालू घडामोडी. स्कॉच स्टेट ऑफ गव्हर्नन्स रिपोर्ट 2021 महाराष्ट्र आणि ऊर्जा श्रेणीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर अव्वल स्थान पटकावले आहे. इंडिया गव्हर्नन्स फोरमचा एक भाग म्हणून 18 जून 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या समारंभात महाराष्ट्राला स्टार ऑफ गव्हर्नन्स स्कॉच अवॉर्ड इन पॉवर अँड एनर्जी पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. याबद्दल ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी ऊर्जा विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना श्रेय देत त्यांचे अभिनंदन केले आहे. महापारेषणने ड्रोनचा वापर हा विशेषतः दुर्गम भागातील अतिउच्च दाबवाहिन्यांचे वेळेवर सर्वेक्षण व देखरेख करण्यासाठी केला आहे. मुंबई उपनगर व शहरी भागातील महत्वाच्या पारेषण वाहिन्यांच्या जुन्या तारा बदलून नवीन HTLS कंडक्टरचा उपयोग करून वाहिन्यांच्या क्षमतेत वाढ करण्यात आली आहे. मोनोपोल मनोऱ्यांचा वापर सुरू केला आहे, त्यामुळे वहिवाट मार्ग म्हणजे राईट ऑफ वे या समस्या कमी करण्यासाठी व रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. करोना काळात ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत व प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सातत्याने ऊर्जा कंपन्यांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन सूचना केल्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला अखंडित व विक्रमी वीज पुरवठा तेव्हा झाला. सुयोग्य नियोजन केल्यामुळे तौक्ते निसर्ग चक्रीवादळ पूरपरिस्थिती यातही विद्युत पुरवठा सुरळीत ठेवला गेला. यामुळे या पुरस्कारामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. जाणून घेऊया पुढील बातमी. भारतीय भाषिक कादंबरीच्या अनुवादाला आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक मिळण्याचा ऐतिहासिक क्षण हिंदी लेखिका गीतांजली श्री यांच्या पुस्तकामुळे लाभला आहे. त्यांच्या रेत समाधी या कादंबरीचा डेझी रॉकवेल यांनी केलेला टुंब ऑफ सँड हा अनुवाद पुरस्कारासाठी निवडण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजत असलेले समकालीन पोलिश, दक्षिण कोरियाई आणि जपानी साहित्यिकही या पुरस्काराच्या स्पर्धेत होते. समकालीन परिस्थितीवर भाष्य करण्याच्या फंदात अजिबात न पडता गोष्टीत रमवणारी अशी ही कादंबरी आहे. हा पुरस्कार मिळेल याबाबत शाश्वती नव्हती, त्यामुळे मलाच आश्चर्याचा धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया गीतांजली श्री यांनी पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर व्यक्त केली. बुकर पुरस्काराच्या दीर्घ यादीत टुंब ऑफ सँड यासह वेगवेगळ्या 11 भाषांमधून अनुवादित 13 पुस्तकांचा समावेश होता. हा पुरस्कार 50,000 British pounds इतक्या रकमेचा असतो. तो मूळ लेखिका आणि अनुवादकामध्ये विभागून देण्यात येतो. या कादंबरीची गोष्ट भारतात, पाकिस्तानात आणि वाघा अटारी सीमेवर घडते. चंद्रप्रभा देवी ही 18 वर्षांची स्त्री दिल्लीच्या घरी पती निधनानंतर अंथरुणाला खिळलेली, पण एक दिवस तिची जीवन इच्छा जागृत होऊन ती हिंडू फिरू लागते. स्त्री आणि पुरुष यांच्या सीमेवर असलेल्या एका तृतीय पंथीला भेटते. मुलीसह पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेते. त्यासाठी पासपोर्ट व्हिसाचे सोपस्कार पार पाडते. वाघा सीमेवरले ते संचलन पाहताना तिला सआदत हसन मंटो कृष्णासोबती यांच्यापासून सारे सरहदी लेखक भेटतात. उत्तर प्रदेशातील मैनपुरीत जन्मलेल्या आणि सध्या दिल्लीत वास्तव्याला असलेल्या गीतांजली यांची रेतसमाधी ही 5वी कादंबरी आहे. त्यांनी अनेक लघुकथा लिहिल्या आहेत. त्यातील अनेक इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, कोरियन भाषांमध्ये अनुवादित करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या 2 कादंबऱ्या इंग्रजीत आल्या आहेत. शिवाय भारतीयता आणि डावेपणा यांच्यातला दुभंग प्रेमचंद्रांच्या साहित्यात कसा दिसतो हे सांगणारा प्रबंध त्यांनी इंग्रजीत गीतांजली पांडेय या नावानं लिहिला, तोही ग्रंथरूप झाला आहे. वळूया पुढील बातमीकडे. जाणून घेऊया पुढील बातमी. मुंबईतील फिल्म डिव्हिजन्सचे परिसर, जिथे भारतातील सुप्रसिद्ध असे राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आहे, तिथेच 17वा मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अर्थात मेक्फ सुरू होणार आहे. हा महोत्सव माहितीपट, लघुपट आणि अॅनिमेशन पटांना समर्पित असतो. आठवडाभर चालणाऱ्या या द्वैवार्षिक महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ वरळीतल्या नेहरू केंद्रात होणार आहे. चित्रपटांचे प्रसारण फिल्म डिव्हिजनच्या संकुलात असलेल्या विविध अत्याधुनिक चित्रपट गृहात होईल. मिक्फ 2022 जगभरातील चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक यांच्याकडून भरघोस प्रतिसाद मिळाला. या महोत्सवासाठी 30 देशांतून एकूण 808 प्रवेशिका आल्या. महोत्सवाच्या स्पर्धा विभागात 102 चित्रपट दाखवले जाणार आहेत. यापैकी 35 आंतरराष्ट्रीय चित्रपट स्पर्धा गटात आणि 67 राष्ट्रीय चित्रपट स्पर्धा गटात असणार आहेत. 18 चित्रपट मिक्फ प्रिझ्म भागात दाखवले जातील. या महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट ठरणाऱ्या सिनेमाला सुवर्ण शंख पुरस्कार आणि 10 लाख रुपये रोख दिले जातील. प्रतिष्ठेचा डॉक्टर व्ही शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार देखील याच महोत्सवात दिला जातो. 10 लाख रुपये चषक आणि प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. माहितीपट क्षेत्रात विशेष उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या सिनेसृष्टीतील नामवंत दिग्गजांना हा पुरस्कार दिला जातो. आतापर्यंत एस कृष्णमूर्ती, श्याम बेनेगल, नरेश बेदी, विजया मुळे यांसारख्या मान्यवरांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. फिल्म डिव्हिजनशी दीर्घकाळ संबंधित आणि 50 दशकात ते या संस्थेचे मानद चित्रपट निर्माते असलेल्या सुप्रसिद्ध निर्माते दिग्दर्शक व्ही शांताराम यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ हा पुरस्कार देण्यात येतो. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला 50 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या स्मरणार्थ यावर्षी त्याची कंट्री ऑफ फोकस म्हणून निवड झाली आहे. मिक्फ 2022 मध्ये बांगलादेशातील विशेष 11 चित्रपट दाखवले जातील. यात समीक्षकांनी गौरवलेल्या हसीना डॉटर टेल या चित्रपटाचाही समावेश आहे. नेटफ्लिक्सची मूळ मालिका माइटी लिटल भीम आय लव्ह ताजमहल या भागाचा मिक्फ 2022 मध्ये वर्ल्ड प्रीमियर होणार आहे. भारत आणि जपान यांच्या संयुक्त विद्यमाने रामायण द लिजेंड ऑफ प्रिन्स रामा या पहिल्या अॅनिमेशन चित्रपटाचे देखील मिक्फ मध्ये विशेष सादरीकरण होणार आहे. मिक्फ जगातील प्रतिष्ठित माहितीपट महोत्सवांपैकी एक आहे. माहितीपट कर्मी, सिनेरसिक, चित्रपट समीक्षक, प्रसारण करते आणि OTT मंच तसेच विद्यार्थ्यांना एकत्र आणते. ते मिळून माहितीपट क्षेत्रातील समकालीन कल काय आहे यावर मंथन आणि चर्चा करतात. जाणून घेऊया पुढील घडामोड. सैन्य दलाने आयोजित केलेल्या समारंभात इंडिया गेट इथे असलेली अधोमुख रायफल आणि हेल्मेट हे 1971 युद्धात हुतात्मा झालेल्या सैनिकांचे प्रतीक राष्ट्रीय युद्ध स्मारकातील परमयोद्धा स्थळ येथे हलवण्यात आले आहे. परमवीर चक्र विजेत्यांच्या पुतळ्यांच्या केंद्रस्थानी ते बसवण्यात आले आहे. यासोबतच 1971 युद्धात हुतात्मा झालेल्या सैनिकांच्या स्मारकाचे राष्ट्रीय युद्ध स्मारकात विलीनीकरण पूर्ण झाले. या समारंभाचे नेतृत्व एकीकृत संरक्षण दलाचे एकात्मिक संरक्षण सेवांचे प्रमुख एअर मार्शल BR कृष्णा यांनी केले. तीनही सेवांचे महासैन्य सहाय्यक समकक्ष यावेळी उपस्थित होते. या समारंभाचा एक भाग म्हणून इंडिया गेट इथे अखेरची मानवंदना देण्यात आली. CISC यांनी इंडिया गेट येथे पुष्पचक्र अर्पण केले. त्यानंतर अधोमुख रायफल आणि हेल्मेट काढण्यात आले. सजवलेल्या वाहनातून परमयोद्धा स्थळ इथे नेऊन नव्याने करण्यात आलेल्या स्मारकात बसवण्यात आले. CISC आणि तीनही संरक्षण दलाच्या महासैन्य सहाय्यक समकक्षांनी नव्या स्मारकाला मानवंदना दिली. जाणून घेऊया पुढील बातमी. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपल्या कारवार नौदल तळ कर्नाटक या भेटीदरम्यान भारतीय नौदलाच्या सर्वात प्रबळ असलेल्या नौकांपैकी एक INS खांदेरी या स्टेल्थ पाणबुडीतून समुद्र प्रवास केला. कलवरी श्रेणीच्या या अत्याधुनिक पाणबुडीच्या युद्धक्षमता आणि आक्रमक शक्तीविषयी त्यांना माहिती देण्यात आली. संरक्षण मंत्र्यांनी पाणबुडीला पाण्याखाली वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची क्षमता देणाऱ्या प्रगत सेन्सर सूट युद्धप्रणाली आणि शस्त्र क्षमता दर्शवणाऱ्या कार्याची पाहणी केली. या पाहणीबद्दल माध्यमांशी बोलताना अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करण्याबद्दल पाणबुडीच्या कर्मचाऱ्यांचे तसेच कुठलाही धोका निपटण्यासाठी सज्जता आणि आक्रमण क्षमता कायम ठेवणे यासाठी अभिनंदन केले. INS खांदेरी हे मेक इन इंडियाचे ठळक उदाहरण आहे. भारतीय नौदलाने मागणी नोंदवलेल्या 41 पैकी 39 जहाजे किंवा पाणबुड्या भारतीय जहाज बांधणी केंद्रात बनत आहे. ज्या वेगाने आणि जितक्या संख्येने भारतीय नौदलाने जहाजे आणि पाणबुड्यांचे जलावतरण केले आहे त्याने आत्मनिर्भर भारत तयार करण्याचा संकल्प अधिकच मजबूत होत आहे. भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका विक्रांतच्या जलावतरणाबद्दल राजनाथ सिंह म्हणाले, यामुळे INS विक्रमादित्य सोबतच देशाची सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. मात्र त्याचवेळी त्यांनी हे स्पष्ट केले की भारतीय नौदलाची सज्जता ही आक्रमणासाठी चिथावणी नाही तर हिंद महासागर क्षेत्रात शांतता आणि सुरक्षेची हमी देण्यासाठी आहे. जाणून घेऊया रेल्वे विषयक बातमी. रेल्वे संरक्षण दलाचा अलंकरण समारंभ नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते पार पडला आहे. यावेळी वैष्णव यांच्या हस्ते RPFच्या 104 कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपती शौर्य पुरस्कार, विशिष्ट सेवेसाठीची पोलीस पदके, अतिविशिष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदके आणि जीवनरक्षा पदके देऊन राष्ट्रपतींच्या हस्ते वर्ष 2019-20 आणि 21 मध्ये सन्मानित करण्यात आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. दिवंगत जगबीर सिंग यांच्या पत्नी सुनीता देवी यांनी त्यांच्या वतीने वैष्णव यांच्याकडून गौरव स्वीकारला. दिवंगत जगबीर दिल्लीजवळच्या आदर्शनगर आझादपूर रेल्वे स्थानकावर रेल्वे रुळावर अडकलेल्या 4 मुलांचे जीव वाचवताना आपल्या प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले होते. अतुलनीय शौर्य आणि धाडसी वृत्तीने या संकटात त्यांनी आपल्या कर्तव्याचाही पलीकडे जात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता या मुलांचा जीव वाचवला. त्यांना त्यांच्या या बलिदानासाठी मरणोत्तर राष्ट्रपती पोलीस शौर्य पदकाने तसेच जीवनरक्षा पदक देऊन गौरवण्यात आले होते. RPFच्या जर्नल, RPFची प्रशिक्षण पुस्तिका आणि RPF सराफ पुस्तिकेचेही प्रकाशन या सोहळ्यात केले गेले. RPFने एकटीने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी मेरी सहेली हा उपक्रम सुरू केला आहे. रेल्वेमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी
5 मूलभूत तत्व जसं की अंत्योदय तंत्रज्ञानाचा अंगीकार, गुंतवणूक संस्थात्मक पुनर्रचना आणि जमिनीवर काम करणाऱ्या गटांचे सक्षमीकरण हे तत्व अधोरेखित केले गेले. विशेष भांडवली गुंतवणुकीमुळे रेल्वे सुरक्षा दलात परिवर्तनात्मक बदल घडून येतील असेही सूचित केले गेले. हरियाणामधील जगधारी इथे रेल्वे सुरक्षा दर कमांडो प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास 30 कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा सुद्धा यावेळी करण्यात आली. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आज अशा पद्धतीने आपण चालू घडामोडींचा आढावा घेतला आहे. पुन्हा भेटूया पुढील सत्रात. तोपर्यंत स्टे ट्यून टू रेडिओ MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी. धन्यवाद.
नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी. आज जो आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ. सुनते हैं पहली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय बारे में. नेजटियो ने माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन. नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञ की एक टीम ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे मौसम स्टेशन स्थापित किया है. नेपाली मीडिया ने बताया, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित मौसम निगरानी प्रणाली हवा के तापमान, हवा की गति और दिशा, वायु का दाब, बर्फ की सतह की ऊंचाई में परिवर्तन और आने वाली और बाहर जाने वाली छोटी और लंबी तरंग विकिरण जैसे विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को मापेगा. रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने भी एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से में 8,000 मीटर की ऊंचाई पर एक स्वचालित मौसम निगरानी प्रणाली स्थापित की थी. चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग में माउंट एवरेस्ट पर 5,200 मीटर से लेकर 8,800 मीटर तक के 8 स्टेशन हैं. बढ़ते अगले अपडेट की ओर. अपडेट है राज्य के बारे में. गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने खोला क्षेत्रीय कार्यालय. ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने देश की बुनियादी ढांचे और सतत विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की योजना की घोषणा की है. बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, NDB मुख्यालय के साथ निकट समन्वय के काम करते हुए भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभिक परियोजन तैयारी और तकनीकी सहायता, पाइपलाइन विकास, परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी के साथ साथ क्षेत्रीय पोर्टफोलियो प्रबंधन सहित परियोजना की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा. भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय उधारकर्ताओं और हितधारकों के साथ NDB के जुड़ाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. आरओ हमारी ऑन द ग्राउंड उपस्थिति का विस्तार करता है, परियोजनाओं को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन करने में योगदान देता है. मार्को स्ट्राइजो NDB अध्यक्ष ने ये कहा. बढ़ते अगले अपडेट की ओर. यह अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक खनन मामले में कंपनियों को लोह अयस्क निर्यात करने की अनुमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों की खदानों से लोह अयस्क के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है और खनन कंपनियों को सीधे बिक्री के जरिए अयस्क बेचने की अनुमति दे दी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने खनन फर्मों द्वारा आवेदनों के एक बेंच पर आदेश दिया और उन्हें लोह अयस्क निर्यात पर भारत सरकार के नियमों का पालन करने के लिए कहा. शीर्ष अदालत ने पर्यावरणीय गिरावट और आने वाली पीढ़ियों के लिए खनिज संसाधन को बचाने के 2011 में कर्नाटक में लोह अयस्क खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसे निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन नवीनतम आदेश ने निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया और लोह अयस्क ऑपरेटर के केवल ई नीलामी के बजाय सीधे बिक्री के माध्यम से उत्खननित अयस्क बेचने की अनुमति दी, जो खनन कंपनी और स्टील कंपनियों के लिए एक जीत हो सकती है. बढ़ते अगले अपडेट है नियुक्ति के बारे में. सलील पारेख इंफोसिस के CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त हुए. IT सेवा प्रमुख इंफोसिस ने कहा कि नियामक फाइलिंग के सलील पारेख को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है. पारेख एकमात्र गैर संस्थापक CEO होंगे जो दूसरे कार्यकाल के लिए कंपनी के शीर्ष पर रहने में कामयाब रहे. कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने नामांकन और परिश्रमिक समिति की सिफारिश पर पारेख को 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2027 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है, जो शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है. पारेख की पुनर्नियुक्ति महत्वपूर्ण है, जो कि इससे शीर्ष स्तर पर बहुत आवश्यक निरंतरता मिलती है। बढ़ते अगले अपडेट की ओर, अपडेट है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने जीता गोल्ड। भारत की निकहत जरीन ने तुर्की में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता। विश्व चैंपियन बनने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला बन गई है। चैंपियनशिप के फ्लाईवेट डिवीजन में मुक्केबाज ने थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को 5-0 से हराया। 25 वर्षीय जरीन दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना के निजामाबाद शहर की रहने वाली है। वह पहले एक जूनियर युवा विश्व चैंपियन थी। 2018 में ओलंपिक मुक्केबाज मेरी कॉम के यहाँ जीतने के बाद चैंपियनशिप में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। कॉम टूर्नामेंट में 6 बार की चैंपियन रही है। स्वर्ण पदक जीतने वाली अन्य भारतीय महिलाओं में मुक्केबाज सरिता देवी, जेनी आर एल और लेखा केसी शामिल है। बढ़ते अगली अर्थव्यवस्था के अपडेट के और, वित्त वर्ष 2022 में भारत ने 83.97 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि भारत के वित्त वर्ष 2022 के दौरान 83.57 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI आवक दर्ज किया गया है। 2014 से 15 में भारत में FDI आवक केवल 41.15 बिलियन डॉलर था, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के दौरान रिपोर्ट किए गए 83.57 बिलियन डॉलर के उच्चतम वार्षिक FDI प्रवाह की तुलना में। यूक्रेन में सैन्य अभियान और COVID-19 महामारी के बावजूद पिछले साल के FDI डॉलर 1.60 बिलियन से अधिक था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, वित्त वर्ष 2003 और 2004 की तुलना में भारत की FDI में 20 गुना वृद्धि हुई है, जबकि FDI केवल 4.3 अरब अमेरिकी डॉलर था। मंत्रालय ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए भारत तेजी से एक पसंदीदा देश के रूप में उभर रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की ओर, फोन पे खरीदेगा वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेल्थ डेस्क। अपनी वित्तीय धन प्रबंधन सेवाओं को बढ़ाने के लिए वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल भुगतान फर्म फोन पे लगभग $50 मिलियन में वेल्थ डेस्क और लगभग $20 मिलियन में ओपन क्यू का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। इस साल की शुरुआत में फोन पे ने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में आवेदन किया, जो एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी स्थापित करने की दौड़ में प्रतिद्वंदियों में शामिल हो गया। पे ने पुष्टि की कि वह वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू का अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन लेन देन की मूल्य का खुलासा नहीं किया। फोन पे के प्रवक्ता ने कहा, फोन पे वेल्थ डेस्क का अधिग्रहण कर रहा है। संस्थापक और पूरी टीम फोन पे समूह के हिस्से के रूप में काम करेगी और दोनों प्लेटफॉर्म स्वतंत्र रहेंगे। अगली अपडेट है खेल के बारे में। UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जर्मनी के इंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट ने जीता। जर्मन क्लब इंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट ने स्पेन के सेविल में पेनल्टी पर रेजर्स को 5-4 से हराकर 42 साल की अपनी पहली यूरोपीय ट्रॉफी जीती है। गोलकीपर केविन ट्रैम्प ने अतिरिक्त समय के अंत में और एक अन्य शूटआउट गोल में बचा लिया, जिसने फ्रैंकफर्ट को पेनल्टी पर 5-4 से जीत से दिलाने में मदद की है। स्कॉटिश क्लब रेजर्स भी 1972 में कप विनर्स कप के बाद से अपना पहला यूरोपीय खिताब जीतने की कोशिश कर रहे थे। इंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट के केविन ट्रैम्प मैन ऑफ द मैच थे। शूटआउट में गोलकीपर केविन ट्रैम्प ने अतिरिक्त समय के अंत में गोल बचाया और फ्रैंकफर्ट को पेनल्टी पर 4-5 से जीत हासिल में मदद की। इस जीत ने फ्रैंकफर्ट के लिए अगले सत्र में चैंपियंस लीग में पहली उपस्थिति हासिल की। बढ़ते अगले अपडेट की ओर, अपडेट है नियुक्ति के बारे में। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त हुए। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को फिटनेक कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, शर्मा को 19 दिसंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए फिर से पद पर नियुक्त किया गया है। इसी अधिसूचना में कंपनी ने यह भी बताया कि कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी मधुर देवड़ा को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 मई 2022 को 5 साल की अवधि के लिए 1 कम्युनिकेशन जो पेटीएम ब्रांड के तहत काम करती है, उन्होंने कहा कि उनसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड नाम से एक तो उद्यम सामान्य बीमा कंपनी बनाई है, जिसमें उन्होंने 10 वर्ष की अवधि में 950 करोड़ रुपए का निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। बढ़ते हैं आखिरी अपडेट की ओर, अपडेट है नियुक्ति के बारे में। IFS विवेक कुमार बने PM मोदी के नए निजी सचिव। 2004 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी विवेक कुमार को संयुक्त सचिव स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विवेक कुमार को मोदी का PS नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से एक विज्ञप्ति में कहा गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभाग कुमार IFS 2004 को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव पद स्थान पर प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को वेतन मैट्रिक के स्तर 14 पर वेतन के साथ मंजूरी दे दी है। विवेक कुमार 2004 बैच के एक IPS अधिकारी है जो 2014 में उप सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में शामिल हुए थे। तो दोस्तों आप सुन रहे थे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा में। आज आप सभी से लेता हूँ इजाजत, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु स्प्रेडिंग नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो MPSC गुरु स्प्रेडिंग नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। मैं आर जे उद्धव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज कार्यक्रम में। डेली करंट अफेयर्स क्विज आज हम सुनने जा रहे हिंदी में। हमारा पहला सवाल है, बढ़ते पहले क्विज की ओर, भारत के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने कोऑर्डिनेट पेट्रोल के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। इसके विकल्प है ए बांग्लादेश, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया, डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण हाल ही में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। बढ़ते अगले सवाल की ओर, DGCA ने निम्नलिखित में से किस एवरेज को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया है जिससे वह कमर्शियल उड़ान संचालन फिर से शुरू कर सके। इसके विकल्प है ए स्पाइसजेट, बी इंडिगो, सी जेट एयरवेज, डी विस्तारा। इसका सही जवाब है सी जेट एयरवेज। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जेट एयरवेज को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया है जिससे वह कमर्शियल उड़ान संचालन फिर से शुरू कर सके। अगली क्विज की ओर, निम्नलिखित में से किस एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। इसके विकल्प है ए अन्ना कबाले दुआ, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी लिंसी पादिकाला जोसेफ, डी रेचल अब्राहम जोसेफ। इसका सही जवाब है ए अन्ना कबाले दुआ। केन्या के मार्साबिट काउंटी की अन्ना कबाले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर, एंथनी नॉर्मल अल्बनीज निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। इसके विकल्प है ए स्पेन, बी बेल्जियम, सी ऑस्ट्रिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। एंथोनी नॉर्मन अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 20वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए है। अगले क्विज की ओर, पेटीएम ने निम्नलिखित में से किससे अपना प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। इसके विकल्प है ए विजय शेखर शर्मा, बी समीर निगम, सी राहुल चारी, डी बिन्नी बंसल। इसका सही जवाब है ए विजय शेखर शर्मा। 97 कम्युनिकेशंस जो पेटीएम ब्रांड के तहत संचालित होता है, अपने संस्थापक विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बढ़ते अगले क्विज की ओर, निम्नलिखित में से किस इंफोसिस के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इसके विकल्प है ए चित्रा नायक, बी डी सुंदरम, सी सालिल पारेख, डी नंदन एम नीलेकानी। इसका सही जवाब है सी सलील पारेख। सलील पारेख को इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। बढ़ते अगले क्विज की ओर, जैव प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस पोर्टल की स्थापना की। इसके विकल्प है ई सी ओ आर आर ए पी, बी बी आई ओ आर आर ए पी, सी आर ई आर आर ए पी, डी डब्ल्यू ई आर आर AP। इसका सही जवाब है बी पोर्टल बायो RRAP। देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए नियामक अनुमोदन की मांग करने वाले सभी लोगों की जरूरत पूरी करेगा और इस प्रकार ईज ऑफ साइंस के साथ साथ ईज ऑफ बिजनेस के लिए एक भी राहत प्रदान करेगा। ते अगले क्विज की ओर, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। इसके विकल्प है स्पेन, बी भारत, सी तुर्की, डी पुर्तगाल। इसका सही जवाब है सी तुर्की। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर, निम्नलिखित में से किसने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। इसके विकल्प है ए लवलीना रुगोहीन, बी अंकुशिता बोरो, सी निकहत जरीन, डी जमुना बोरो। सही उत्तर है सी निकहत जरीन। भारत की निकहत जरीन ने चैंपियनशिप के फ्लाईवेट डिवीजन में थाईलैंड की जीत पोंग जूता मास को 5-0 हरा कर तुर्की में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये सवाल आखिरी सवाल है, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया। इसके विकल्प है ए 20 मई, बी 21 मई, सी 22 मई, डी 23 मई। इसका सही जवाब है बी 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्ण भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर चिन्हित है, जो 21 मई 1951 को आतंकवादी हमले में मारे गए थे। तो दोस्तों आप सुन रहे थे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।
हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरजे तेजल वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू द स्पेक्ट्रम अकेडमीज रेडियो एमपीएससी गुरु। लेट्स लर्न अबाउट डेली करंट अफेयर्स क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, अलॉन्ग विथ इंडिया विच कंट्री हैज कंडक्टेड द फोर्थ एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल दैट इज कॉरपैट। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। The fourth edition of the Indian Navy Bangladesh Navy Coordinated Patrol that is CORPAT conducted recently in the Northern Bay of Bengal. Question 2 is, the DGCA has granted which airways the air operator certificate allowing it to resume commercial flight operations? Option A, SpiceJet. Option B, IndiGo. Option C, Jet Airways. And option D, Vistara. Correct answer is option C. The Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA, granted Jet Airways the air operator certificate allowing it to resume commercial flight operations. Question 3. Who received the Aster Guardians Global Nursing Award 2022? Option A, Anna Cabell Duba. Option B, Florence Nightingale. Option C, Lindsay Pedicala Joseph. And option D, Rachel Abraham Joseph. Correct answer, option A, Anna Kabala Duba from Marsabit County in Kenya received the Aster Guardians Global Nursing Award 2022. Question 4, Anthony Norman Albanese was elected as the new Prime Minister of which country? Option A, Spain. Option B, Belgium. Option C, Austria. Option D, Australia. Correct option D, Anthony Norman Albanese has been elected as the 31st Prime Minister of Australia. Next question, Paytm has reappointed who as its managing director and chief executive officer? Option A, Vijay Shekhar Sharma. Option B, Samir Nigam. Option C, Rahul Shari. Option D, Bini Bansal. Correct answer, option A, 197 Communications, which operates Paytm brand, has reappointed its founder Vijay Shekhar Sharma as managing director and chief executive officer of Paytm. Question 6. Who was reappointed as the MD and CEO of Infosys? Option A, Chitra Nayak. Option B, D, Sundaram. Option C, Salil Parekh. Option D, Nandan M. Nilkeni. Correct answer, option C. Salil Parekh has been reappointed as the Chief Executive Officer and Managing Director of Infosys. Question 7. For biotechnology researchers and startups, the Ministry of Science and Technology established which portal? Option A, EcoRRAP. Option B, BioRRAP. Option C, RERRAP. Option D, WERRAP. Correct answer, option B. The portal BioRRAP will cater to all those seeking regulatory approvals for biological research and development activity in the country and thus offer a huge relay for ease of science as well as ease of business. Question 8. Where did the 12th edition of IBA Women's World Boxing Championships were held? Option A, Spain. Option B, India. Option C, Turkey. And option D, Portugal. Correct answer, option C. The 12th edition of the International Boxing Association's World Boxing Championships were held in Istanbul, Turkey. Question 9. Who bags gold in 12th edition of IBA Women's World Boxing Championship? Option A, Lovlina Borgohain. Option B, Ankushita Boro. Option C, Nikhat Zarin. Option D, Jamuna Boro. Correct answer, option C. India's Nikhat Zarin has won gold in the Women's World Boxing Championships in Turkey by defeating Thailand's Jitpong Jutamas 5-0 in the flyweight division of the championship. Last question of the quiz is, when the Anti-Terrorism Day was observed across India? Option A, 20th May. Option B, 21st May. Option C, 22nd May. and option D, 23rd May. Correct option, option C. The Anti-Terrorism Day is marked on the death anniversary of the former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi, who was killed in terrorist attack on 21st May 1991. Hello friends, you are listening to Radio MPSC Guru, spreading the knowledge powered by Spectrum Academy. And this is Ajay Dejal discussing with you daily current affairs updates. And here is the first update. It is about an international event. According to the Nepalese media, a team of National Geographic Society experts installed the world's highest weather station on Mount Everest at an altitude of 8,830 meters to automatically measure various meteorological phenomena. The solar power weather monitoring system is designed to measure a variety of meteorological phenomena such as air temperature, wind speed and direction, air pressure, change in snow surface height and incoming and outgoing short and long wave radiation. According to the report, a Chinese expedition also installed an automatic meteorological monitoring system on the northern side of Everest at an altitude of 8,800 meters. According to Chinese media reports, Beijing has 8 stations set up on Mount Everest ranging in altitude from 5,200 to 8,800 meters. Next update is about state. The BRICS country's New Development Bank has announced plans to open a regional office in India at the Gujarat International Finance Tech City, GIFT City, to address the country's infrastructure and sustainable development needs. The Indian regional office will focus on project origination, including initial project preparation and technical assistance, pipeline development, project implementation and monitoring, and regional portfolio management, according to a press release from the NDB. The Indian regional office will play an important role in increasing NDB's engagement with borrowers and stakeholders. NDB President Marcos Trojo stated IRO expands are on the ground presence contributing to project preparation and implementation. Third update is about economy. Allowing miners to sell ore through direct sale, the Supreme Court has lifted the ban on iron ore export from mines in Karnataka's Ballari, Chitradurga and Tumakura districts. A bench of Chief Justice of India N.V. Ramana, Justice Krishna Murari and Justice Hima Kohli issued an order on a batch of mining firm applications instructing them to follow the Government of India's rules on iron ore exports. In 2011, the Supreme Court banned iron ore mining in Karnataka, citing environmental degradation and the need to preserve the mineral resource for future generations. It had also prohibited exports, but latest order lifted the curbs on export and allowed iron ore operators to sell excavated ore through direct sale as against through e-auctions only. What could be a win-win for merchant miners and steel companies? Next update is about an appointment. In a regulatory filing, Infosys announced the reappointment of Salil Parekh as CEO and MD of the company for another 5 years. Parekh will be the only non-founder CEO to preserve a second term at the helm of the company. According to the company's filing, the board of directors of the company, acting on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, has reappointed Parekh as Chief Executive Officer and Managing Director of company from July 1, 2022 to March 31, 2027. Subject to shareholder approval, the reappointment of Parekh is significant because it provides much needed continuity at the top level. Fifth update is about sports. Nikhat Zarin of India has won the Women's World Boxing Championships in Turkey, becoming only the fifth Indian woman to do so. In the championships flyweight division, the boxer defeated Thailand's Jitpong Jutamaz 5-0. Zarin, 25, is from Nizamabad, the city in the southern Indian state of Telangana. She previously held the title of Junior Youth World Champion. This is India's first gold medal at the championship since Olympic boxer Mary Kom trimmed here in 2018. Kom has won the tournament at 6 times in a row. Boxers Sarita Devi, Jenny RL and Lekha KC are among the other Indian women to have won gold. Next update is about economy. According to the central government, India received the highest annual FDI inflow of $83.57 billion during financial year 2022. In 2014 and 15, FDI inflow in India stood at mere $45.15 billion, as compared to the highest ever annual FDI inflow of $83.57 billion reported during the financial year 2021-2022, overtaking last year's FDI by $1.62 billion despite military operation in Ukraine and COVID-19 pandemic, the Ministry of Commerce and Industry said in an official statement. Since financial year 2003-04, when inflows were at $4.3 billion, India's FDI inflows have increased 20-fold. According to the ministry, India is quickly emerging as a preferred country for foreign investments in the manufacturing sector. Seventh update is also about an economy. In order to expand its financial and wealth management services, Walmart-owned digital payments from PhonePe is set to acquire wealth management firms Wealth Desk and OpenQ for approximately $50 million and $20 million respectively. PhonePe applied to the Securities and Exchange Board of India earlier this year for a mutual fund license, joining competitors in the race to establish an asset management company. PhonePe confirmed that it is acquiring Wealth Desk and OpenQ, but did not disclose the transaction's value. PhonePe is acquiring Wealth Desk. The founder and the entire team will be working as a part of the PhonePe group, and both the platforms will remain independent, a PhonePe spokesperson said. Next update is about sports. Eintracht Frankfurt, a German club, won the first European trophy in 42 years after defeating Rangers on penalties 5-4 in Sevilla, Spain. Kevin Trapp, the goalkeeper, made a save at the end of extra time and another in the shootout to help Frankfurt win on penalties 5-4. Rangers were also attempting to win their first European title since the Cup Winners' Cup in 1972. Eintracht Frankfurt's Kevin Trapp was named man of the match. In the shootout, goalkeeper Kevin Trapp made a save at the end of extra time to help Frankfurt with 5-4 on penalties. The victory also secures Frankfurt's first appearance in the Champions League next season. Next update is about an appointment. Vijayashekhar Sharma, founder of Paytm, has been reappointed as the fintech company's managing director and chief executive officer, according to a statement. Sharma has been reappointed to the position for a 5-year term beginning December 19, 2022. In the same notification, the company also stated that Madhur Devra, the company's chief financial officer, has been appointed as an additional director for 5-year term beginning May 20, 2022. 197 Communications, which operates under the Paytm brand, announced the formation of Paytm General Insurance Limited, a joint venture general insurance company in which it has committed to invest 950 crore rupees over 10-year period. Last update is about an appointment. Vivek Kumar, a 2004 batch Indian Forest Service officer, has been appointed as Prime Minister Narendra Modi's personal secretary at the joint secretary level. The Cabinet Appointments Committee approved Vivek Kumar's appointment as Modi's personal secretary. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the proposal for appointment of Vivek Kumar, IFS 2004, as PS2 Prime Minister at the Joint Secretary level in the Prime Minister's office with a pay at level 14 of the pay matrix, the Department of Personnel and Training said in a statement. Vivek Kumar is 2004 batch IFS officer who joined the Prime Minister's office as Deputy Secretary in 2014. Dear friends, this was our daily current affairs update. For more such updates, do stay tuned to Radio MPSC Guru, spreading the knowledge powered by Spectrum Academy. Thank you so much.